नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर बैंकॉक पहुंचे। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंगतान सिवात के साथ वार्ता करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त 25,000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त किया। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, भारत अमेरिका के 26% शुल्क लगाने के प्रभाव का विश्लेषण और आकलन करेगा। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का सनराइजर्स हैदराबाद से आमना सामना होगा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक पेश करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार करना है। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक को हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। श्री रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ का लाभ सिर्फ मुसलमानों को ही मिल सकता है और यह सही नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में हस्तक्षेप करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्ति का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है, न कि मुसलमानों के धार्मिक व्यवहार में हस्तक्षेप करना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के सभी विभिन्न संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा ताकि इसे समावेशी बनाया जा सके। लोकसभा ने कल रात वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के कल लोकसभा में पारित होने के बाद देश भर में प्रमुख नेताओं ने इसका स्वागत किया है। कानून क्षेत्र से लेकर प्रबंध समूह के विशेषज्ञ ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार के कथित मामलों, कुप्रशासन और न्यायिक निगरानी के अभाव के कारण केंद्र और राज्य वक्फ बोर्डों को हो रही परेशानी का समाधान करेगा। आकाशवाणी समाचार में विशेष बातचीत में विधि विशेषज्ञ और कर्नाटक में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपड़ी ने कहा कि इससे लोग वक्फ बोर्ड के फैसले पर किसी भी विवाद को लेकर ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए सशक्त बनेंगे। इस बीच ऑल इंडिया पसमांडा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष सारिक अदीब ने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और शासन में जरूरी पारदर्शिता लाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने आज संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि इस विधेयक के जरिए व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवस की यात्रा पर आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री सूर्य जंगरंग रांगकीट ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। बैंकॉक पहुंचने पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आधिकारिक वार्ता में भाग लेंगे और भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग मजबूत करने को इच्छुक हैं। भव्य स्वागत का आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और थाईलैंड के गहरे सांस्कृतिक संबंध है जो दोनों देशों के लोगों के जरिए लगातार समृद्ध हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बिम्स्टेक सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता को देखते हुए संगठन के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाएं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि नई व्यवस्था मूल रूप से अधिक क्षेत्रीय और एजेंडा विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 50,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने वाली कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि पूरी चयन प्रक्रिया में धोखेधड़ी हुई है और इसकी विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। इस प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी दी जा सकती है। अदालत ने मानवीय आधार पर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए छूट देते हुए कहा है कि वे नौकरी पर बने रहे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने के फैसले के प्रभाव का विश्लेषण और आकलन किया जाएगा। नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए उचित उपाय करेगी। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटो क्षेत्र के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 291 अंक गिरकर 76,326 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 69 अंक गिरकर 23,264 पर कारोबार कर रहा था। अरुणाचल युवा संसद 2.0 का दूसरा संस्करण आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के डीके हॉल में शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बहस से हुई जिसका शीर्षक था अरुणाचल प्रदेश में बांध विकास के लिए उत्प्रेरक या स्थिरता के लिए खतरा, जिसमें डेरा नाथुम सरकारी कॉलेज और डॉन बॉस्को कॉलेज की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। सभा को संबोधित करते हुए संरक्षक AYP अबू तायंग ने कहा कि संसद राज्य के युवाओं को बहस करने, चर्चा करने और अपने राज्य के भविष्य के लिए समाधान का सपना देखने के लिए एक मंच देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आज की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए तायंग ने खुलासा किया कि अरुणाचल युवा संसद के तीसरे संस्करण के लिए माहौल पहले ही तैयार हो चुका है। यह कार्यक्रम कल तक जारी रहेगा।
आई एम प्रेम ताबा, आई एम द कन्वीनर ऑफ अरुणाचल यूथ पार्लियामेंट। अरुणाचल यूथ पार्लियामेंट AYP इन शॉर्ट, इट वाज कंसीव्ड इन 2023 एट द बैकड्रॉप ऑफ ए सिचुएशन दैट वी फेल्ट नेसेसरी टू एड्रेस। वी फेल्ट दैट देयर आर लॉट्स ऑफ यूथ इन अरुणाचल, वेरी पोटेंशियल यूथ, बट although there are existing platforms, traditional platforms for placing their opinions and all, government is doing a lot of things, but we felt that there should be a signature platform, flagship platform for students and youths to debate and discuss on issues that really matter to them.
IPL क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामनी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है और अगले 4-5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में कोई महत्वपूर्ण गर्मी की लहर की भविष्यवाणी नहीं की गई है। बिहार के चेटी छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। शाम को श्रद्धालु राज्य भर में विभिन्न नदियों और अन्य जलाशयों के किनारे स्थापित छठ घाटों पर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे। 4 दिवसीय छठ पूजा, जो सूर्य देव की पूजा है, मंगलवार को नहाय खाय के साथ शुरू हुई। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है और गर्मी की पूजा 2 में से सबसे कठिन होती है। कल छठ पूजा का समापन उगते सूर्य को दूसरे अर्घ्य या सुबह के अर्घ्य के साथ होगा। इसके साथ ही श्रद्धालु प्रकृति के देवता सूर्य को अर्घ देने के बाद अपना 36 घंटे का उपवास तोड़ेंगे। श्रद्धालु गंगा, गंडक, कोसी, सोन, बागमती और राज्य के अन्य नदियों के तट पर छठ पूजा करेंगे और अर्घ्य देंगे। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।